हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। टीवी पर आ रही खबर देखकर सुनैना का मुंह हैरानी से खुला रह गया। स्वीटी भी उसी तरफ देख रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल सच नहीं है ना? आदित्य इस कार में नहीं होगा, है ना? सुनैना ने स्वीटी की ओर देखते हुए पूछा। सुनैना की आंखों में आंसू थे। हाँ भाभी, भैया को कुछ नहीं हुआ होगा। चलो हम अभी वहाँ लोकेशन पर चलकर देखते हैं, कुछ तो पता चलेगा, स्वीटी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। टीवी पर दिखाया जा रहा था कि एक कार का ट्रक से बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। पता चला कि वो कार सिंगानिया इंडस्ट्रीज के पूर्व मालिक मिस्टर आदित्य सिंगानिया की थी। ये उनके किसी दुश्मन की साजिश लग रही थी, क्योंकि ये एक्सीडेंट बिल्कुल नेचुरल नहीं लग रहा था। एक्सीडेंट के बाद ट्रक ड्राइवर फरार था और ट्रक जानबूझकर उस तरफ आया था, जबकि उसे वहां जाना नहीं था। सुनैना ने आंसू पोंछे और कमरे से अपना वॉलेट लेकर आई। हड़बड़ाहट में उसने कपड़े भी नहीं बदले और उन्हीं रात के कपड़ों में वहां से निकल गई। सुनैना बहुत परेशान थी, लेकिन उसने स्वीटी को घर पर ही रुकने और नैना का ध्यान रखने को कहा। खुद लोकेशन पर पहुंचकर उसने रवि और शिवानी से मिली। उन लोगों को भी आदित्य के बारे में कुछ नहीं पता था। अनय ने भी वो खबर देखी थी और तब से परेशान था। उसने बार बार सुनैना का नंबर डायल किया, लेकिन सुनैना का फ़ोन बिजी बता रहा था। खबर देखने के बाद सुनैना ने रवि का नंबर डायल किया था और लगातार उससे बात कर रही थी। रवि उस लोकेशन पर पहुंच चुका था, लेकिन आदित्यों का कोई सबूत नहीं मिला था। कार का ड्राइवर बुरी तरह जख्मी था और उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था, लेकिन वो भी होश में नहीं था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। शिवानी थोड़ा घबराते हुए बोली, मैम, सर का कुछ भी पता नहीं चला है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इतना भयानक एक्सीडेंट था ये। रवि ने भी सिर पकड़ते हुए कहा, पता नहीं किसकी साजिश हो सकती है ये सब। चुप करो तुम दोनों, कुछ भी नहीं हुआ होगा आधी को, मुझे पूरा भरोसा है, और वो जरूर कहीं और होगा। जहां तक मुझे पता है, वो इस कार में जल्दी वापस नहीं आता, या फिर ऑफिस से ही कहीं और निकल गया होगा। वो सब आपस में बात ही रहे थे कि तभी सुनैना का मोबाइल फोन रिंग हुआ। एक अननोन नंबर से कॉल थी। सुनैना इतनी टेंशन में थी कि किसी नए नंबर से बात करने का उसका मन नहीं था, लेकिन रवि के कहने पर उसने कॉल रिसीव कर ली। उसके मुताबिक कोई भी हो सकता था जिससे उन्हें कुछ जानकारी मिल सकती थी। उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल फोन कान से लगाया और साइड में जाकर बात करने लगी। रवि और शिवानी ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। उन दोनों को नहीं पता था कि सुनैना के पास किसका फोन आया है। वे दोनों उसके कॉल पर बात खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। सुनैना लगभग 5 मिनट उस कॉल पर बात करके वापस रवि और शिवानी के पास आई, लेकिन अब वो पहले से काफी रिलैक्स्ड लग रही थी। वो पहले की तरह पैनिक नहीं थी। रवि ने पूछा, क्या हुआ मैम, किसका कॉल था, आदित्य सर का पता चल गया क्या? शिवानी ने भी उत्सुकता में पूछ लिया, सर का ही कॉल था क्या? सुनैना ने दोनों की बातों का जवाब देते हुए बोला, अरे नहीं, आदित्य से बात नहीं हुई, उसके दोस्त का कॉल था और अभी मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। शायद उसे कुछ पता है आदित्य के बारे में, लेकिन तुम लोग ऑफिस जाओ और वहाँ पर इस बारे में कोई अफवाह मत फैलने देना कि आदित्य को कुछ हो गया है। बोलना वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन बस कुछ समय के लिए छिपा हुआ है। रवि और शिवानी ने बिना कोई सवाल किए सुनैना की बात मान ली। रवि आदित्य का वफादार था और कंपनी के लिए काम कर रहा था। उसे अनुभव था कि सुनैना जो कुछ भी बोल रही है वो सही है। आदित्य के सामने ना आने पर अफवाहों से कंपनी पर असर पड़ेगा। आदित्य उन सबके सामने जल्दी नहीं आता था और ना ही कोई पब्लिक अपीयरेंस करता था, इसलिए उनके लिए ये बात मैनेज करना कोई कठिन काम नहीं था। ओके मैम, इतना बोलकर रवि ने सिर हिलाया और शिवानी के साथ वहां से चला गया। सुनैना भी ड्राइवर के साथ अपनी कार में वहां तक आई थी। उसने ड्राइवर को एक एड्रेस पर चलने को कहा। शवहां कहाँ? अनय ने अपने घर पर आदित्य के एक्सीडेंट वाली खबर देखी थी। उसके बाद वहां से निकलती हुई सुनैना की नज़र भी उस खबर पर पड़ी और उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। उसे बुरा भी लग रहा था। भले ही वो आदित्य की कंपनी के साथ कंपटीशन करती थी, लेकिन वो कभी भी उसे जान से मारना नहीं चाहती थी और ना ही उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट कभी सोचा था। अनय वो खबर देखकर थोड़ा परेशान लग रहा था, इसलिए उसने पीछे खड़ी मनस्वी पर ध्यान नहीं दिया। मनस्वी चुपचाप वहां से निकलते हुए अपने कमरे की तरफ आ गई। उसे पता था कि इस वक्त अगर उसका अनय से सामना हुआ तो उन दोनों के बीच कोई बहस जरूर होगी, और मनस्वी फिलहाल किसी भी बात पर बहस नहीं चाहती थी। उन दोनों के बीच बात पहले ही इतनी ज्यादा बनी हुई नहीं थी, इसलिए मनस्वी नहीं चाहती थी कि बिना मतलब की बात और बिगड़ जाए। अनय को मनस्वी और विराज पर शक था, लेकिन इन दोनों में से किसी के भी खिलाफ उसके पास सबूत नहीं था, इसलिए वो फिलहाल सामने से जाकर उनसे कुछ नहीं पूछ सकता था। मनस्वी अपने रूम में आई और अपना मोबाइल फोन निकालकर राज का नंबर डायल किया। विराज ने पहले तो कॉल रिसीव नहीं की, तो फिर मनस्वी ने अपनी दूसरी सिम से उसका नंबर डायल किया, जो कि किसी के पास नहीं था। नया मोबाइल नंबर देखकर विराज ने झट से कॉल रिसीव कर ली और खुश होते हुए बोला, बहुत अच्छा काम किया है तुम लोगों ने, मुझे बिल्कुल खुश कर दिया, और अब मैं तुम लोगों को खुश कर दूंगा। मनस्वी ने निराश आवाज में कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझे खुश कर सकते हो। आज तक तुमने मुझे सिर्फ दुखी ही किया है, लेकिन तुम ये सब भी करोगे, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। विराज चापलूसी करने वाली आवाज में बोला, अरे अरे मनुदी, आपका ये नंबर है क्या? सॉरी, मुझे लगा मेरे दोस्त का है और मैं तो उसके साथ मजाक कर रहा था। वैसे मैंने ऐसा क्या किया जो आप बिना बात के मुझे सुना रही हो? मनस्वी गुस्से से दांत पीसती हुई बोली, देखो विराज, बस करो तुम। तुम्हारा ये नाटक भले ही सबको बेवकूफ बनाता होगा, लेकिन ये मेरे सामने नहीं चलेगा। अगर तुम इतने भोले और मासूम हो, तुमके कुछ नहीं किया, तो फिर मेरे नंबर से कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? मुझे दूसरे के फोन से कॉल क्यों करनी पड़ी? नए नंबर से तो तुमने तुरंत कॉल रिसीव कर ली, इसलिए प्लीज बिजी होने का कोई झूठा बहाना मत बनाना। विराज उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, सॉरी दी, मुझे नहीं पता आपकी कॉल आई थी। एक्चुअली मेरा फोन थोड़ी दूर पर रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही दोबारा रिंग हुआ मैंने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। लेकिन आप बताइए, आप इतनी भड़की हुई क्यों लग रही हैं? लेकिन मनस्वी उसे बहुत दिनों से जानती थी, इसलिए वो उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। उसने उसे लगभग चिल्लाते हुए कहा, विराज शट अप एंड जस्ट स्टॉप योर नॉनसेंस। मैंने तुमसे कहा ना, बंद करो अपना ये नाटक। मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, इसलिए बताओ ये सब क्यों किया तुमने और क्या मिला? तुम आदित्य के पीछे क्यों पड़े हो? ऐसा करने से तुम्हें सुनैना नहीं मिल जाएगी। विराज इस वक्त अकेला अपने घर के रूम में बैठा हुआ था। वो बातें घुमा रहा था, लेकिन मनस्वी ने ऐसी बात बोली जिसे सुनकर विराज समझ गया कि मनस्वी से झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। उसने कहा, जब सब पता है तो फिर क्यों बेवजह मुझे परेशान करने के लिए फोन किया है? आपको क्या लगा था कि आप मेरी मदद करने से मना कर देंगी तो मैं हाथ पर हाथ धरकर चुपचाप बैठ जाऊंगा? नहीं, मैं वो सब कुछ कर लूंगा जो मैं कर सकता हूँ सुनैना को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, और मुझे पता है वो भी उस आदित्य से प्यार व्यार कुछ नहीं करती।
उसकी बातें सुनकर मनस्वी अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, विराज तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुम बिल्कुल साइको हो चुके हो। नहीं, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी। मनस्वी ने चिल्लाते हुए बात पूरी बोल दी, लेकिन विराज ने उसकी बात पूरी सुने बिना ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और उसका नंबर भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। ऐसा करने के बाद विराज अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखता है, जहां पर सुनैना की तस्वीर लगी हुई थी जो उसने चुपके से ली थी। दूसरी तरफ मनस्वी पर शक होने की वजह से अनय कमरे के बाहर खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था। उसकी फोन कॉल पर हुई बातें सुनने के बाद अब मनस्वी पर कोई शक नहीं रह गया था, लेकिन ये सब कुछ विराज ने नहीं किया है इस बात का उसे पूरा यकीन था। लेकिन फिलहाल वो अकेले कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सीधा कमरे के अंदर आया। क्रमशः